राव यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 30 जून 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राव
नारायण 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 अध्याय चलता है, इसको क्षेत्र क्षेत्र की विभाग योग नाम है। क्षेत्र और क्षेत्र की बात ठीक चल रहा। इसमें दो प्रकरण है, पहले श्लोक से 18 श्लोक तक एक प्रकरण है और 19 से 34 तक का एक प्रकरण है। 18 से 34 श्लोकों का अध्याय। तो पहला प्रकरण है उसमें क्षेत्र क्षेत्र के विवाह होने पर भी इसमें 7 भक्ति का वर्णन है। इस बार क्षेत्र से आपकी माम किसी कहा, अगर ये दशा मई चाहने नहीं होगी तो भक्ति व्यवसायी मई कहा। अंत में इसी क्षेत्र का ज्ञानम ज्ञानम इसी क्षेत्र का ज्ञानम ये श्वास मध भक्त मध भाव आगे ऐसे अस्पष्ट का प्रयोग किया। और प्रगति पुरुषों से भी यह 19 में से 34 में तक कहीं भी ऐसा पद नहीं आता है। भक्ति का वाचक नहीं, अस्मत शब्द का प्रयोग भगवान ने नहीं किया। तो भक्ति साथ में रहते हुए ज्ञान के मार्ग का वर्णन किया है और वहां अगर ही वर्णन किया है केवल विवेक ज्ञान मार्ग में विवेक प्रधान है। ज्ञान में जो कर्ण की अपेक्षा है वो नहीं है, कर्ण की अपेक्षा केवल ध्यान में है 6 अध्याय में है। और मुझे कर्ण की इतनी अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष कर्ण निरपेक्ष साधन है। तो भक्ति में एक भाव होता है, वो भक्ति भाव सहित क्षेत्र क्षेत्र का विभाग है। ये साधन शुभ तुझे खूब अच्छी से अध्ययन करें। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र जीयते, क्षेत्र है इदं इदं या अंगुली निर्देश होता है ऐसे सामने मन अपना पत्र नहीं होता, अधिक नहीं होता ऐसे होता। तुझे क्षेत्र है शरीर ये इदंता से देखा जाता, इसको जो मैं मान लेते हैं ये गलती है। विवेक के द्वारा इसको मैं नहीं माने, क्यों मैं आ गया क्षेत्र में। महाभूताय निहंकारो बुद्धि इंद्रियाणी दशे गंगा पंच गोसरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना क्षेत्र समाज से न स्वीकार विकारों से क्षेत्र का बनाया तो उसमें महाभूतानी अहंकार अहंकार उसमें आ गया। तो अहंकार सहित चिंता से ये एक विशेष ध्यान देने की बात है साधकों के लिए बहुत ही काम की चीज है। अहम अहम जो होता है ना ये दृश्य है ये स्वरूप नहीं है। अहम कोई अपना स्वरूप मान लेगा मैं ही हूँ ये बस ये खास इदम शरीरम तो इदमता से अहम भी इदमता से देखने का है मैंपन से देखने का नहीं है इदमता से। तो मैंपन जो अहम कहा जाए ये इदम शरीरम कौन से क्षेत्र इसको क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र इसको जो जानते हैं जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है क्षेत्र जाना क्षेत्रज्ञ वो तद्विदा वो तत्व को जानने वाले पुरुष जानने वाले को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा इति पढ़ाओ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तत्व को जानने वाले पुरुष क्षेत्र जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो पहली एक पंक्ति में क्षेत्र का वर्णन हुआ दूसरी पंक्ति में क्षेत्रज्ञ का वर्णन हुआ तीसरी पंक्ति में क्षेत्रज्ञ के साथ परमात्मा अपनी एकता बताते हैं। क्षेत्रज्ञ साथ मांग रही क्षेत्रज्ञ वो भी मेरा ही स्वरूप है क्योंकि मैं वहां सो जीव लोग जीव भूत सनातना ये जीव मेरा ही अंश है साक्षात तो इसमें अहम करके अलग मानता ये गलती है। तो अहम अलग न माने वो क्षेत्र की आप ही माम वृद्धि क्षेत्र की भी मैं ही हूँ भगवान के माम वृद्धि इसमें जो चेतन है स्वयं वो चेतन भगवान का स्वरूप है वो क्षेत्र का स्वरूप नहीं है क्षेत्र को जानने वाला है अहम भी जानने वाला है। जैसे हमारे प्रकाश में ये चीजें दिखती है ऐसे अहम भी प्रकाश में दिखता है वो प्रकाश है ज्ञान का अपने स्वयं जानते हैं और एक अहंकार भी जानते हैं। तो अहंकार भी क्षेत्र में है क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्र वो भी मेरा ही स्वरूप है उसको तुम अलग मत समझो। तो वो मैपन है उसको भगवान के अर्पण कर दो मैपन मैपन अलग नहीं है अलग मैपन रखना यही बंधन है और मैपन को भगवान के अर्पित कर दिया ये मुक्त हो गया। चाहे ज्ञान के द्वारे अपने में मैपन नहीं है ऐसा अनुभव कर लो चाहे मैपन को भगवान अर्पण कर दो शरणागत हो जाओ तो ये कर्ण निरपेक्ष साधन होगा। अहंकार है ये कर्ण है ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसा मानते है तो वो अहम एक वृत्ति है अहंकार एक व्यक्तित्व है एक वृत्ति है दो है। तो मन बुद्धि जैसे है मन बुद्धि चित्त है ऐसे एक अहम वृत्ति है और एक अहम मालिक बना हुआ है जो बुद्धि का भी मालिक है इंद्रियों का भी मालिक है शरीरों का भी प्राणों का भी अपने को मालिक मानता है वो अहम है वो है जीव का स्वरूप। तो जीव कब तक है जब तक अहंकार के साथ अपनापन करता है तब तक ये जीव है और अहम प्रकृति का है मेरा स्वरूप नहीं है तो वो चिन्मय परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये बाधा देने वाला भेद पैदा करने वाला अहम है तो अहम अपना स्वरूप नहीं है। ये अभी अगर चाहे कोई भाई बहन समझना चाहे समझते हो तो अभी ये देखो अहम अहम मैं हूँ मैं ये एक दीखता है जैसे इस प्रकाश में दृश्य दिखते हैं, ऐसे भीतर में अहम भी दिखता है, मैं हूँ, ऐसे मैंपन दिखता है। वो दिखता है वो आप नहीं होता, जैसे मैं वृक्ष देखता हूँ तो मैं वृक्ष नहीं हूँ, मैं वृक्ष से अलग हूँ। ऐसे अहम दिखता है ठीक तरह से ज्ञान में, आँखों से तो इस प्रकाश में ये चीजें दिखती है, और ज्ञान में अहम भी दिखता है, बुद्धि भी दिखती है, मन भी दिखता है, ये दिखने वाले हैं। तो दिखने वालों का सहारा लेने से जड़ का सहारा है, और चिन्मय तत्व की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती, जड़ के त्याग के द्वारा होती है। जड़ के त्याग करने पर चिन्मय तत्व पैदा होते हैं, तो जड़ता जो बाधक है, उस जड़ता में मैंपन को मुख्य लेकर साथ में चलोगे तो जल्दी प्राप्ति नहीं होगी। मन बुद्धि लगाओगे, अहम को लगाओगे, इनको लगाओगे परमात्मा, ये करण सापेक्ष साधन है, इसको अपना न मानना, अपना स्वरूप नहीं है। क्षेत्रज्ञता माम वृद्धि, सर्व क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र जितने हैं उन क्षेत्रों की जो चेतन जीवात्मा है वो भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप है। परंतु मेरा स्वरूप तभी है जब अहम को आप इदंता से देखोगे, तब क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ज्ञानम यत्त ज्ञानम मत मामा, भगवान के क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान हो वेर मत में ज्ञान है। तो पहली पंक्ति में क्षेत्र का वर्णन है, दूसरे में क्षेत्रज्ञ का वर्णन है, तीसरी पंक्ति में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ और परमात्मा के साथ अभिन्नता का वर्णन है, और चौथी में बताया कि यही मेरे मत में ज्ञान है। मानो क्षेत्रज्ञ वो स्वयं परमात्मा के साथ एक है, क्षेत्रज्ञ है वो ये क्षेत्र मात्र को जानता है, परमात्मा सबको जानता है, उस सबको जानता है। जानने में आने वाला संसार है, प्रकृति है, प्रकृति का कार्य है, ये अलग है, जानने वाला परमात्मा अलग है। ऐसे ही शरीर को जानने वाला अहम है, ये अहम अलग है, और अहम को भी जानता है वो वास्तव में परमात्मा स्वरूप है। क्षेत्र ज्ञानम यथ ज्ञान यथ ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान है, तथ ज्ञानम मामकम मतम मम मतम मत मेरे मत ज्ञान है, भगवान इसको ज्ञान कहते हैं। तो क्षेत्रज्ञ को और परमात्मा को एक कर दे, अहम को और क्षेत्र को एक कर दे, ये खास विवेक है, ज्ञान मार्ग के लिए बहुत बढ़िया चीज है। थोड़े में छोटी सी बात में बहुत बढ़िया चीज है, इसमें कोई शंका हो तो बहुत नहीं। क्षेत्र क्षेत्र गई और मार तो क्षेत्र और क्षेत्र क्षेत्र है, अहम भी क्षेत्र है, क्यों क्षेत्र का वर्णन जहाँ आएगा पांचवें श्लोक में, वहाँ महाभूताएं निहंकार हो बुद्धि अव्यक्त में उसे इंद्रियाणी दस एक पंचचंद्रिय गोचरा, ये क्षेत्र है। तो क्षेत्र में अहम आया है, तो अहम है ये अपना स्वरूप नहीं है, मैं हूँ मैं हूँ, देखो मैं हूँ ऐसा जो मानते है ना, हूँ है ये तो है सत्ता, जैसे यह है वह है तू है मैं हूँ, तो इसमें हूँ है ये सत्ता है, परंतु अहम साथ होने से हूँ है, अहम अगर साथ में न रखे तो है तू है यह है वह है ये सब है होगा, मम अहम मिल जाए साथ में तो हूँ हो जाएगा, मैं हूँ अस्मदी हूँ हो जाएगा। मैं होने से अस्मद का प्रयोग नहीं हो, प्रयोज माने अप्रयोज माने दोनों अवस्थाओं में ये उत्तम पुरुष नहीं होता, वहाँ पर प्रथम पुरुष ही होता है। तो क्षेत्रज्ञ और संसार में जो माम भगवान है इसकी एकता है, वहाँ मैं हूँ नहीं है, वहाँ मैं भी है, मैं हूँ नहीं होगा वहाँ पर, मैं के साथ मिलने से हूँ होता है, नहीं तो है ही रहता है। तो है रूप से परमात्मा है, सब संसार में है, ये व्यापक है, वो है तो परमात्मा और ये है संसार। संसार को प्रतिक्षण नष्ट होता है, एकदम कभी एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, और है वो कभी नष्ट होता ही नहीं, अनादिकाल से संसार है, ऐसा है आ रहा है का नाश नहीं होता। है खास चेतन है, संसार ये जड़ है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, ये जड़ चेतन की जो एक एकता मान लेते हैं, ये एक एक गांठ है। विद्युत हृदय ग्रंथि सिद्धंते सर्व संशय, ये हृदय ग्रंथि भजन होता है ग्रंथि, मानो मैं मन से अपने को अलग माने, मैं पन को दृश्य माने, तो ये ग्रंथि भेद हो जाता है, ग्रंथि खुल जाती है, और मैं के साथ मैं अपने को मान ले कि मैं यही हूँ चेतन को, तब ये ग्रंथि हो जाती है, वो जन्म मरण का कारण होती है। ये तो जो संभ्राव क्षेत्र की शरीर, ये जो एतत शब्द दिया है ना, इदम शरीरम कौन से में इदम शब्द दिया है, और एतत योग एतत शब्द दिया है, एतत में और इदम में फर्क है, और स और अध शब्द में तत् शब्द में अस्त शब्द में फर्क है। इदम शरीर है, इदम शब्द आता है अंगुल शरीर, एतद आता है बहुत नजीक में, यह वो है इदम है तो दूर है, और एतद है वो नजीक है, तो एतद यो व्यक्ति को तात्पर्य क्या है, एतद नाम जो अहम वृत्ति है, ये अहम भी एतद है, एतद यो व्यक्ति इसको जो व्यक्ति है, इदम से इदम कहते क्षेत्रम, क्षेत्र को तो इदमता से कहा, परंतु अहम को एतद यो व्यक्ति इसको जो जानता है वो क्षेत्र की है, अहम को ही जानता है, अहम जानने में आता है, जानने में आता है वो जानने का विषय होता है, वो जानने वाले का स्वरूप नहीं होता। की बात एकदम प्रत्यक्ष अनुभव में लेना है कि एतद यो व्यक्ति इसको जानता है, किसको अहम भाव को, नजीक से नजीक अहम भाव है, ये मम भाव दूर होता है, मैं और मेरा, तो मैं नजीक होता है, मेरा उससे दूर होता है, तो मेरा कह सकते हैं यह कह सकते हैं, और क्षेत्र के एतद यो व्यक्ति जो जानने वाला है वो बहुत नजीक है अहम के नजीक, तो अहम अपना स्वरूप नहीं है। अहम को और इदम को लेकर लेते हैं, उनको साथ में लेकर मन बुद्धि को लगाते हैं, ये कर्म सापेक्ष साधन होता है, और अहम को भी इदमता से देख ले मेरा नहीं है, ये विवेक प्रधान है, तो ज्ञान मार्ग विवेक प्रधान है, जड़ता के प्रधान नहीं है। आज विवेक प्रधान ज्ञान, आज विवेक प्रधान लुप्त जैसा हो गया है, वेदांत की प्रक्रिया में अभी चलता है तो भक्ति की तरह मान्यता को लेकर चलता है, विवेक को आदर नहीं देते हैं, विवेक को आदर देना चाहिए तब ज्ञान मार्ग होगा। तो एतद यो व्यक्ति इसको जो जानता है, इदं क्षेत्रम है, इदं शरीरम कौन थे क्षेत्रम इति अभिधीयते, क्षेत्र अभिधा है, ये अभिधा वृत्ति है, लक्षणा होती है, व्यंजना होती है, अभिधा होती है, अभिधा वृत्ति साक्षात कहने वाली अभिधा वृत्ति होती है, लक्षणों की जब वो लक्षणा वृत्ति होती है, भाग लक्षणा त्याग लक्षण भाग त्याग लक्षणा जहर लक्षणा अजहर लक्षणा जहर अजहर लक्षणा, ये सास की जरा ये छोड़े कोई ऊर्जा है कोई मतलब नहीं। तो एतद यो व्यक्ति जो जानता है ना, एतद यो व्यक्ति ये खास ध्यान देना, एतद यो व्यक्ति के ऊपर जोर देना है, एतद नाम क्षेत्र ये अहम इसको भी जानता है, वो क्षेत्र की है अहम जानने वाला, अगर अहम के साथ मिल जाना है तो वो जानता नहीं भूल जाता है, क्षेत्र के साथ मिल जाता है तो जैसे तरीके ग्रंथि घुल जाती है, मेरी ग्रंथि खुलती नहीं, तत्व ज्ञान होता नहीं, तो कभी तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो तो एतद यो व्यक्ति इसको जोर दे, एतद नाम जो अहम अहम मैं इसको भी जो जानता है जानने माता है ऐसे उस चुप हो जाए, अहम 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 मैं संस्कृत में अहम कह दो, हिंदी में मैं कह दो, ये जानना है। इसको जानने वाला, इसको जो वेद चीज जानता है वो क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र को जाने का नाम क्षेत्रज्ञ। तो अहम को भी जानता है, अहम भी विषय रूप से है, ज्ञ रूप से है, जल है। अहम चेतन नहीं है, अहम के साथ स्वयं मिल जाता है तो जल है। जैसे मैं हूँ तो मैं हूँ मिल गया, हूँ सत्ता का नाम है और मैं प्रकृति का कार्य है। सातवें अध्याय में भी आता है भूमि रापो अनल वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति इयम में विस्मय प्रकृत इति अहंकार इति इयम। उसको इयम का इंद्रता से भगवान ने प्रकृति का वर्णन किया, इस वास्ते इयम स्त्रीलिंग से कहा इयम। तो अहंकार इति इयम, अहंकार ये इदम ये है। अहंकार प्रयोग कर दिया अहंकार इति इयम इदंता से कहा, और अपरा इयम इयम अपरा मनो विक्षिप्त मेरी प्रकृति है। इतस्तु अन्याम प्रकृति विधि में पराम, इससे परा प्रकृति है। क्या जीव भूत जीव रूप, तो भगवान ममई वांसो जीव रूप जीव भूत सनातन अनादिकाल से मेरा ही स्वरूप है। तो वो स्वरूप बताना है, वो भगवान की परा प्रकृति है, भगवान का स्वरूप है वो। और अहम स्वरूप नहीं, अहम प्रकृति का स्वरूप है। तो अहम को ऐसा को लेकर के अपने को अलग मान लेना है, ये खास ज्ञान है। भगवान के मत मेरे मत में ज्ञान है। तो 13वें अध्याय में जितना वर्णन होगा, क्षेत्र का वर्णन होगा और क्षेत्रज्ञ का वर्णन होगा, इसको जानने के लिए ज्ञान का वर्णन होगा। ये सब सामग्री से ये दो श्लोकों में पूरी बात कह दी, जो 13वां अध्याय कहना चाहिए उस 13वां अध्याय की पूरी बात कह दी। इसमें कोई किसी संदेह रहा हो तो बोलो, फिर आगे समय ये मेरे मत में ज्ञान है। मान क्षेत्रज्ञ के साथ में परमात्मा की एकता है, ये ज्ञान है। वो ज्ञान न होने से बंधन होता है, जन्म मरण होता है, दुख होता है, संताप होता है, जलमार जितने अनस आते हैं सब में सब अनस आ जाएंगे, कोई अनस बाकी नहीं रहेगा। अब अगर प्रश्न शुरू होते हैं 13वें अध्याय में जो कहना है, उस कहने के लिए 6 बातें बताते हैं। 3 श्लोक में 6 बातें हैं। तत्क्षेत्रम यत् यादृक् यत् विकारी यतस्य यत्। तत्क्षेत्रम यत् यादृक् यत् विकारी यतस्य यत्। तो 5 हो जाती है, 4 चीजें हैं। और सच स करके क्षेत्र की सच जो यत्न उसका प्रभाव, तो वो क्षेत्र की उसका प्रभाव वो ये चीज। इन 6 चीजों का वर्णन करूंगा समाज सेवी में सुनू, ये मैं 3 कहता हूँ तो संक्षेप से सुनू, समाज सेवी बहुत संक्षेप से सार सार बात बताता हूँ। तो तत्क्षेत्र तत्क्षेत्र जो कहा, तत्क्षेत्र क्या, वो जो क्षेत्र तत्शब्द अंगुल निर्देश होता है, इधम शरीरम कौन थे क्षेत्रम, ये तत्व कहता है तत्क्षेत्र। वो क्षेत्र क्या है, याद ऐसा है और कैसा है, बिना विनाशील है, परिवर्तनशील, याद यद विकारी मानिए इच्छा द्वेश सुखम दुखम संगत चेतना धृति एतद क्षेत्र विकार उदारतम। विकार के सहित कहा तो जिन विकारों वाला है वो क्षेत्र है। यथा यद विकारी जिससे जो पैदा होता है वो कार्य कर्म करते थे, हेतु प्रकृति होते थे, पुरुषार्थ को दुखाना भोगते, विकार विधि प्रकृति संभवान, ये प्रकृति में उत्पन्न होने वाले यथस्थ यथ, ये 3 गुण और विकार ये सब प्रकृति से उत्पन्न होने वाला यथस्त यथ है। और सच कर लेना क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ तो क्षेत्रज्ञ वो सच, वो क्षेत्रज्ञ यह मनु जो है एक बात, यद प्रभाव से जिस प्रभाव वाला है वो तत्समय तत्सर्वेश तो तत्क्षेत्र में यद याद रहेगी यद विकारी यो यद प्रभाव यद शब्द याद शब्द है यद तत्काल नित्य संबंध है तत्समय वो सब मेरे सुनो तो यद विकारी यथस्त और यद प्रभावस्त यह और यद प्रभावस्त ये सब करके तत् आ गया तत् रह गया मन वो सब का सब तू मेरे से संक्षेप से सोचते वो बताऊ अलग अलग ठीक तरह से तो अलग कैसे बताया क्षेत्र को तो बताया पांचवें श्लोक में और यादृक बताया कैसा है वो विनश्य तो अविनश्यंत है ये नष्ट हो रहा है ये अदृक उनका स्वभाव क्या है हरदम क्षरण हो रहा है क्षेत्र है हरदम नष्ट हो रहा है ये जितना संसार जितने शरीर है ये हरदम नाश की तरफ जा रहे हैं एकदम खत्म हो रहे हैं यद विकार अच्छा विकारों वाला है यथ प्रकृति से उत्पन्न होने वाले है तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाला है जन विकारों वाला है और ये उत्पत्ति विनाशशील है ये क्षेत्र है जितना वर्णन होगा आगामी में इसका वर्णन होगा और सच प्रभाव सच करके क्षेत्र क्या है इसका प्रभाव क्या है अगर बताएंगे 31 32 33 100 तीस में वो शरीर स्थोप कौन से न करो थे न लेते ये इसका प्रभाव है क्षेत्रज्ञ का वो क्षेत्र को तो जानता है पर क्षेत्र में रहता है वो शरीर स्थोप कौनते न करोते न लिप्यते स्वरूप से कर्तापना लिप्तपना इसमें नहीं है कर्तापन मान लेता है तो तीसरे अध्याय का अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मन्यते अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है इस बात से पांचवे अध्याय में कहा नहीं वो किंचित करोमी थी उक्तो मन्यते योगी को चाहिए मैं कुछ नहीं करता हूँ तो कर्तापन का निषेध करे तो कर्तापन का निषेध होने से सब कर्म अलग हो जाएंगे कर्म कर्ता के अधीन होते हैं और कर्ता को ही फल देते हैं फल भले से दोनों बच जाते साथ मिलने से फल में आसक्ति हो जाती है और फल से दोनों बन जाता है तो ये बन जाता ये प्रभाव समास में संक्षेप से सुनो अब इसमें एक संक्षेप से सुनो तो महाराज विस्तार कहाँ का है आप संक्षेप से कहते हैं कि ऋषि भी बहुत अधिक है ऋषियों ने बहुत प्रकार से इसका वर्णन किया है क्षेत्र और क्षेत्र का जड़ और चेतन का नित्य और अनित्य का सत और असत का बहु अधिक अनेक प्रकार से ऋषियों ने कहा है छंदो भी विविध और वेदों के द्वारा विविध ही विविध छंद अलग अलग जो मंत्र है वहाँ उनमें भी विविध छंद इसका वर्णन हुआ है वहाँ विस्तार है और ब्रह्म सूत्र बताइए ब्रह्म सूत्र में असाधो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र है और ब्रह्म सूत्रों के पदों से भी कहा है वो कैसे हेतु मत भी उन बड़े शंकर भाष्य है ना उसमें सब युक्तियां दी है और उसमें प्रमाण दिए है वो हेतु भी तो भाई हेतु जितने उनसे जो ठीक विनिश्चित हेतु निश्चित हो ठीक तरह से हेतु भी वहाँ उनके द्वारा विस्तार से कहा है भगवान कहते हैं मैं वो संक्षेप से कहता हूँ मैं विस्तार नहीं करता हूँ पहले संक्षेप बात समझ ले तो फिर विस्तार समझ में आ जाता है और पहले ही विस्तार कर दे तो आदमी रुक जाता है समझता नहीं ठीक तरह से तो भगवान कहते हैं संक्षेप से कहता हूँ सुन अब कहते हैं कि क्षेत्र क्या है ये तो समासेन में जो संक्षेप से सुनो तो विस्तार कहाँ है वो बात बता दी विस्तार की बात बता करके अब कहते हैं क्षेत्र से शुरू किया इधन से ही क्षेत्र वो इधन करके क्षेत्र क्या है महाभूतानि पृथ्वी तेज वायु आकाश ये महाभूतानि अहंकार एक अहम है, जैसे वह मेरा पूर्ण वायु खंग मनो बुद्धि जैसे अहंकार है, वो अहंकार और बुद्धि वो बुद्धि वही कही बुद्धि और अव्यक्त अव्यक्त प्रकृति। तो अहंकार और बुद्धि दो मिलाने से पांच भूतों में सात हो गए, ये सात है प्रकृति विकृति है ये सात, और अव्यक्त है ये प्रकृति है, ये विकृति नहीं है, मतलब पैदा नहीं हुई प्रकृति पुरुषों से विद्यादि उभाव की प्रकृति और पुरुष अनादि है, तो प्रकृति उत्पन्न नहीं हुई है। ये जो महाभूत है अहंकार है बुद्धि है, ये प्रकृति से तो पैदा हो, प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से महाभूत और महाभूतों से अगारी शब्द स्पर्श गंध पांच विषय आदि उत्पन्न होते हैं, संपूर्ण सृष्टि पैदा होते हैं। पावक गगन समीरा पंच रचित है अदम सही है, सब पांचों से पैदा होते हैं, तो पांचों से पैदा होते हैं वो हुई सात की विकृति, और सातों जो है कोई कारण होने से इसको कहते हैं प्रकृति विकृति, दोनों नाम है इसका, और एक प्रकृति वो प्रकृति है वो विकृति नहीं, किसी से पैदा नहीं हुई, प्रकृति अनादि है वो प्रकृति है, ये सात संपूर्ण सृष्टि पैदा होते हैं। पावक गगन समीरा पंच रचित है अदम सही है, सब पांचों से पैदा होते हैं, तो पांचों से पैदा होते हैं वो हुई सात की विकृति, और सातों जो है कोई कारण होने से इसको कहते हैं प्रकृति विकृति, दोनों नाम है इसका, और एक प्रकृति वो प्रकृति है वो विकृति नहीं, किसी से पैदा नहीं हुई, प्रकृति अनादि है वो प्रकृति है, ये सात प्रकृति विकृति है, ये याद में तो कोई घड़ी बात नहीं है, प्रकृति क्या है प्रकृति विकृति क्या है अगाड़ी विकृति सोलह, ये कोई अर्थ होगी याद है तो कोई बात नहीं, खास याद रखने की तो एक जो व्यक्ति जो जानता है वो क्षेत्र की है, अहम को भी जानने वाला, ये खास बात है, मूल बात है, इसमें सार चीज है, ये अहम भी जानने में आता है, मैं भी जानने में आता है, मैं परिचिन्न जानने वाला, मैं पहले वो परिचिन्न है, और ये क्षेत्र ये परिचिन्न नहीं है, अव्यक्त होयम अचिंत्य होयम अविकार होयम उच्चते अच्छेद होयम अध्याय अक्रोध असोसिएशन विद्या और सर्वगत, तो सर्वगत है जो परिचिन्न कहा है, एक देश नहीं है, एक देश ये पना है वो अहंकार के कारण से है, अहंकार को साथ में न रहे तो एक देश ही पना नहीं है, अहंकार को पकड़ने से एक देश ही हो जाता है, किसी एक बात को पकड़ने से उसके साथ एकता मान जाने से वो अपने स्वरूप से च्युत हो जाता है, पतित हो जाता है, गिर जाता है, तो ये है तो जानने वाला, पर जानने में आने वाले अहंकार के साथ में मैं हूँ मान लेता है, तो मैं हूँ ये ग्रंथि है, तो मैं तो है प्रकृति का कार्य और हूँ है परम पुरुष परमात्मा का कार्य, परमात्मा का अंश, तो परमात्मा का अंश परमात्मा मिल जाएगा, अहंकार प्रकृति मिल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, इतनी बात लंबी थोड़ी बात ही नहीं, इतनी पूर्णता हो जाएगी एकदम, अहंकार को पकड़े रहोगे तब तो प्रकृति को पकड़े रहोगे, और अहंकार के गुण होते हैं सत्व रजस्तम, अहंकार तीन प्रकार का होता है भागवत में आया है, वो सत्व रजस्तम रहेगा तो वो गुणों के साथ तो उस बंधन से सत्वस्था मध्य तिष्ठा अधोगन से तामसा, गुणों के साथ संबंध होगा सरम मरण होगा, तो कारण गुण संगो से सदा सद्योनि जन्म लो, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, तो गुणों का संग न करे, गुणों का संग कब न करे कि अहं को अपना स्वरूप न समझे, अहं को भी इदंता से देखे, इसको जाना जाए तो आप स्वयं अहं को जानते हो, मैंपन को जानते हो, और भगवान ने मैंपन को प्रकृति का स्वरूप बताया है, यहाँ भी बताया सातवें अध्याय में बताया और भी बताते हैं, तो ऐसा वो है महाभूता ने अंकर बुद्धि अभ्यस इंद्रिया दस एकम कर मन और पंच इंद्रिय गोचरा शब्द स्वरूप विषय, ये सोलह हुए इंद्रिया दस हो गई, एक मन हो गया, पंच इंद्रियों का विषय हो गया, तो सोलह ये है विकृति, केवल विकृति, यदि याद करो सात प्रकृति विकृति है, ऐश्वर्य केवल विकृति है, प्रकृति केवल प्रकृति, बस इसी श्वास है। कोई बात इसको ज्यादा न समझो तो कोई हानि नहीं। समझने की बात तो है कि अहम है, ये अदृश्य है, ये विषय है, एतद् योगेति, इसको जो जानता है, ये खास चीज है। इस प्रकरण में जो कोई इसको अनुभव करना चाहे तो ये खास देखने की बात है। तो ये पांचवें श्लोक में ये पहले सात, एक आठ और सोलह, चौबीस तत्व बताए, ये सब मिलाकर क्षेत्र है, इसका नाम क्षेत्र है। अब क्षेत्र के विकार है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम, इच्छा हो गई अमुक चीज पैदा होनी चाहिए, द्वेष हो गया ये हमारे बाधा देता है हमारी इच्छा पूर्ति में, द्वेष हो गया, सुख हो गया, अनुकूलता मिली सुख हो गया, प्रतिकूलता आई दुख हो गया। तो इच्छा द्वेष सुखम दुखम और संघात, संघात ना पांचों भूतों का मिला हुआ समूह है ये संघात, और चेतना इसमें एक जीने की शक्ति है, जीने की, जो जैसे सोता रहे एक आदमी, एक मुर्दा, दोनों में चेष्टा तो नहीं होती, परंतु मुर्दे को देखो और एक सोते हुए को देखो, तो सोते हुए में मुर्दा नहीं तो चेतना दिखेगी, ये सोता है पर जीता आदमी मरा नहीं है, और मर जाए तो वो चेतना नहीं, वो चेतना है। और धरती ये सब क्या है, ये सब है विकार। तो ये विकारों के सहित एतत् क्षेत्रम, एतत् यहाँ अंगुली निर्देशन कर करके पास में एकदम, ये सब जितने इनके पास में एतत् क्षेत्रम, ये सब का सब क्षेत्र है, क्यों इसमें अहम आ गया ना, इस बात एतत् क्षेत्रम समाज से न स्वीकार उदम विकार एक साथ ये है, इन विकारों के सहित मैं तो क्षेत्र कह दिया। तो क्षेत्र विकारों के सहित क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये त्याज्य है, इधरता से आता है, ये अपना स्वरूप नहीं है, ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति है, प्रकृति विकृति है, केवल विकृति है, सबकी सब प्रकृति है, प्रकृति का कार्य है, अपना स्वरूप नहीं है। अब इस तत्व को समझना है, तो इस समझने को कहा एतद् ज्ञानम, ये तो ज्ञान है ना, यतस् ज्ञानम, यत ज्ञानम और तस् ज्ञानम मम मतम, जो ज्ञान है वो मेरे मत में ज्ञान है, भगवान के मत में इसको ज्ञान कहते हैं। तो उस ज्ञान की प्राप्ति करती है, करनी है, तो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम, ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान के साधनों से होगा। तो साधनों का वर्णन करते हैं, बीस साधन है हमारी सूर्या से लेकर तत्व ज्ञान दर्शन ग्यारहवें श्लोक तक, ये बीस साधन है, ये होने से इसका पता लगेगा, मानो विवेक करने में ये साधन है, ये तो विवेक काम नहीं देता, साधनों के बिना कान में काम नहीं देता, विवेक जागृत नहीं होता, विवेक स्पष्ट नहीं होता, इस वास्ते ये साधन बताते हैं। अब बीस साधन ग्यारहवें श्लोक तक, सात में से सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, पांच श्लोक है, ये पांच श्लोकों का विषय है, ये सात श्लोकों का विषय, छह श्लोकों का विषय हो गया, दस छह सात ग्यारहवें श्लोक तक है, ग्यारहवें श्लोक ग्यारहवीं बाद में अध्यात्म ज्ञान चिंतन तत्व ज्ञान दर्शनम एत ज्ञानम इसी प्रोक्तम, इसी ज्ञानम ये ज्ञान कहा, अमान्य तो यहाँ से शुरू हुआ है वहां तक ये ज्ञान कहलाता है, बीस है, बीस साधु का ज्ञान है, ये ज्ञान इस वास्ते कहा कि इनसे बोध होगा, ये ठीक तरह से अपने हो जाएंगे तो विवेक ठीक काम करेगा, और ये नहीं होगा तो विवेक काम नहीं करता, मानो विवेक स्पष्ट नहीं होता। तो मनुष्य में ये बीस साधन चाहिए, इनमें जितना आप ले सको, इसको सबका नाम ज्ञान कहा, ये तो ज्ञान हुई थी प्रवतम अज्ञानम यदि अन्यथा अज्ञानम, इसका नाम ज्ञान है। तो ज्ञान नाम किसका है, जिससे हम तत्व को जाने वो भी ज्ञान है, और जो ज्ञ रूप है वो भी एक ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूप है परमात्मा का, ये जानने का ज्ञान है, विवेक ज्ञान है। विवेक ज्ञान में सत असत नित्य अनित्य सार असार हे उपाधि ग्रह त्याज्य ऐसे दोनों का अलग अलग ज्ञान होता है, वो है विवेक ज्ञान। और विवेक ज्ञान ठीक होने पर वो असत का त्याग हो करके वो तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। विवेक ज्ञान खुद ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है वो। असत का त्याग हो जाता है, सत रह जाता है, तो ज्ञान हो गया, बोध हो गया ठीक तरह से। तो ये बोध होने के लिए साधन है, उनका वर्णन होता है अभी सातवें से ग्यारहवें तक। अमानित्वम, ये मानीपना है ना, ये बहुत बाधक है। अपने को मान लगा मैं एक आदमी, मैं भी एक अच्छा हूँ, मेरा आदर हो, मेरा सत्कार हो, मेरे को लोग अच्छा समझे, सम्मान कर तो राजी हो जाए, कोई अपमान कर नाराज हो जाए, ये मानीपना है अपने। ये अपन मानीपना रहेगा तो क्या कि शरीर की मुख्यता रहेगी, और शरीर की मुख्यता है तो विवेक कैसे जागृत होगा। शरीर तो एकदम शरीर है, शरीर से अलग है, इसको व्यक्ति उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। तो ये मानीपना अपने में रहने से अपनी इज्जत प्रतिष्ठा रखने के लिए अपने को विशेष समझता है, ये है मानीपना। ये मानीपना रहेगा तो शरीर की मुख्यता रहेगी तो विवेक जागृत नहीं होगा, बातें तो सीख जाएगा, कहना आ जाएगा, तो परंतु विवेक जागृत ही होगा जैसा होना चाहिए। विवेक होता नहीं है, विवेक है। अस विवेक जब दे ही विधाता, रामायण में कहा ऐसा विवेक जब विधाता देंगे तो विधाता का दिया हुआ है उसकी जागृति होगी। विवेक का जो अदर अधिक करोगे तो ये विवेक शुद्ध और समर्थ हो जाएगा, ऐसे आदर नहीं करोगे तो उसकी सामर्थ्य आपके काम में नहीं आएगी। मान लो क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान अलग अलग, ये मत मेरे मत में ज्ञान, तो ये ज्ञान कब होगा, ये अमानित्व। अमानित्व नहीं होगा तो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान नहीं हुआ, क्षेत्र में स्वयं फंसा रहेगा, क्षेत्र में शरीर में मान मेरा हो आदर मेरा हो तो आदर मान होता है शरीर का, शरीर के साथ स्वयं फंसाएगा। तो अमानित्वम पहले चाहिए, अमानित्वम अदम भी तुम, दूसरा बताए अदम भी तुम, दम भी नहीं हो। दम क्या, दिखावटी पर है, दूसरे लोग मेरे को अच्छा समझे तो जब करेंगे कीर्तन करेंगे, लोग देखते हैं इस बार से ठीक करेंगे, अभी तो दम्भ करेंगे, दम्भ मानो है नहीं वैसा पूरे पर में दिखाना, जो थोड़ा है तो ज्यादा दिखाना और नहीं है तो अपने में दिखाना, ये दम्भी पना है। तो दम्भी पने से शरीर अहंकार में शरीर के साथ एकता ये दृढ़ होती है, दम्भ से पाखंड से लोगों को दिखाने के लिए करता है, तो ये दम्भ नहीं चाहिए। अदम्भित्व दम्भ पान लेना चाहिए। दम्भ में एक विलक्षणता और भी है, ये दम्भ दोनों तरफ चलता है, अपने में सदगुण थोड़े है तो करना बतावे और नहीं है तो अपने होना बतावे, ये दम्भ है। इसके सिवाय जिस समाज में जाने से अगर हमारा मान नहीं होता है तो वैसा ही बन जाना है, वो दम्भ है। मानो अच्छे गुण धारण करने का नाम ही दम्भ है, और समुदाय में गए हम घरे की रोटी नहीं खाते तो लोगों में अनादर हो जाएगा, इस वास्ते खा लो समाज का मुसलमान का खा लो अपने हमारे लोगों में आदर हो जाएगा। तो नीचे नीचे के जो गुण वो पकड़ लेना अपने अभिमान में, ये भी दम्भ है। मानो अच्छा पण का आरोप करना ये दम्भ है, पर लोग जहाँ अच्छा समझते हैं वहाँ वैसा अच्छा होने से अपने नहीं भाती चीज वो भी कर लेते हैं, तो ये दम्भ होता है, दोनों तरफ दम्भ होता है। अच्छाई का अभिमान दम्भ होता है, जहाँ लोग अच्छा समझते हैं वहाँ बुराई हो तो बुराई भी स्वीकार कर लेते हैं दिखावटी भाव के लिए, ये भी दम्भ होता है। तो दम्भ दोनों तरफ चलता है, अमानित अदम्भित्वम और अहिंसा, किसी जीव का हत्या नहीं करना, हिंसा नहीं करना, किसी की चीज नहीं उठना, शरीर से बाड़ी से मन से किसी का पूरा चाहना है, शरीर से मारपीट कर देना, मार देना हिंसा है, ऐसे मन से किसी का पूरा चाहना भी हिंसा है, वाणी से कड़वा बोलकर दुख देना ये भी हिंसा है। तो हिंसा करते रहेंगे तो अपने शरीर में अच्छाई का अभिमान पैदा होगा, वो शरीर में पैदा होगा तो देह को इधनता से कैसे देखोगे, अपना स्वरूप दिखेगा तो इधनता देखने बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ज्ञान में बाध हो जाएगा। तो ये 20 साधनों से विवेक बिल्कुल जागरूक हो ठीक तरह से स्पष्ट होता है। इस विवेक को मार्जित करना है, विवेक को पैदा नहीं करना है, विवेक को परमात्मा दिया हुआ, क्योंकि अगर प्रकृति में पुरुषम से विधिनादि उभाव भी प्रकृति और पुरुष दो है, तो दो है तो दो का विभाग भी है पहले से, उनका विवेक भी पहले से है। जैसे दो अनादि है तो इन दोनों का विवेक भी अनादि है, जड़ और चेतन का। इसमें जड़ के रूप रहता रहे तो विवेक जागृत नहीं होगा, जड़ता की मुख्यता रहेगी, फिर भेदन नहीं होगा, ग्रंथ भेदन नहीं होगा। और जड़ता से ऊंचे उस विवेक का आदर करोगे तो विवेक का आदर करेगी, सत्ता का आदर होगा, चिन्मय तत्व का आदर होगा, वो तत्व का आदर होगा। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मेरे लिए शरीर नहीं है, मैं चेतन हूँ, उसके लिए जड़ शरीर मेरे लिए कैसे होगा, और मैं शरीर कैसे, मैं तो एक हूँ, बालकपन से लेकर मैं तो एक हूँ। शरीर बदलता है तो बदलता है, नहीं बदलने वाला, एक कैसे हुआ। ये विवेक स्वतः है आदमी में, परंतु इसका आदर नहीं करता, इसको महत्व नहीं देता है विवेक को, इसी से ये पतन हो रहा है, जड़ के साथ एक हो रहा है तो शरीर के साथ मैंपन हो रहा है। ऐसे अमान्य तो माननी चाहता है तो ठीक हो जाता है, दम्भ करता है, पाखंड करता है, अहिंसा हिंसा नहीं करे तो हिंसा करता है, तो हिंसा में स्वार्थ होता है, पक्षपात होता है, तब हिंसा होती है। तो पक्षपात और हत्या करते हैं, इसमें शरीर का अभिमान पड़ेगा तो विवेक कैसे होगा, विवेक होगा नहीं, विवेक की बाधा लग जाएगी। शांति शांति क्षमा कर देना, तो क्षमा हम करते नहीं, हमारा अपराध किया उसको दंड देंगे, दंड होना चाहिए, अपने दंड दे देते हैं, अपने राज से दंड देते हैं, पंचों से दंड करा देते हैं, जाति वालों से करा देते हैं, तो कोई अपराध नहीं हो तो भगवान से कहते महाराज ऐसा किया इसको दंड मिले, ऐसे भगवान से ही करते थे। तो ये क्षमा नहीं है, क्षमा है अपराध करता है, बिल्कुल अपना अपराध किया, अपने कोई दोष नहीं है, उसने किया अपराध ही, परंतु उसको बिना मांगे क्षमा कर दिया, माफी कर दी, जाने दो, कोई परवाह नहीं किया। पिछले पुत्र से सके उसे क्यों प्रिय प्रिया यार शोरूम अब आया को आप समझते ज्ञान अध्याय में। तो पिता जैसे पुत्र के अपराध क्षमा कर देता है, मित्र जैसे मित्र के अपराध क्षमा कर देता है, ऐसे ही स्त्री के अपराध को पुरुष क्षमा कर देता है, ऐसे हरेक के अपराध को क्षमा कर दिया। तो अर्जुन ने ही कहा कि महाराज मैंने असत को दोषी तत्समक्ष उनके सामने भी और कई बार आप कल हे कृष्ण याद ये सकते ऐसा मैंने कहा तो वो आप क्षमा करें, मेरी वो माफी दे दें, आप बुरा न माने। तो ये बुरा न माना कब होता है, जब अपने में अहंकार नहीं होता है, अभिमान जितना अधिक होगा वे अभिमान के सारे सब रहता है। जैसे नर दमयंती की कथा आती है, उसमें बहेरे में कलजू बढ़ गया, कलजू पहले रहा नल के भीतर, बहुत दुख दिया उसने, बहुत कष्ट दिया, वो नल ने ब्याह कर दिया ना दमयंती के साथ, तो कहा इसने देवताओं का तिरस्कार करके दमयंती ने नल को भरा, इस नल को मैं दंड दूंगा बिना काम कलजू, कलजू की तो ठहरा। ऐसे वो नल में घुस गया, फिर वो जुआ खिलाया, उसे हरा दिया, फिर पासे ही हंस लेकर के एक कपड़ा स्त्री और पुरुष के दोनों पर एक कपड़ा है, वो एक एक पुरुष था, एक एक कपड़े से निकाल दिया था भाई ने, सब राज हर गया था। तो वो एक कपड़ा था उसमें दो देखा कपड़ा हंस चाहे चार आए, वन देकर उनके ऊपर डाला तो कपड़ा लेकर उड़ गए। अब एक कपड़ा रहेगा, आधा तो नल के पहनने के लिए, आधा दमयंती के लिए, राजा राणी से महारानी और राजा महाराजाओं के लिए कपड़े रहेगा। फिर वे जंगल में गए रहे, सोते थे, कि लड़के मन में आया कि मेरे सास के निकले की नहीं, बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही कोमल सी दमयंती, देवता लोग आएगा हमारे को पढ़ रही है, इंद्र और वरुण अपने एकदम चार दिन से आए, लड़का रूप धारण किया और वरमाला किस को पहरा, तो दमयंती है हृदय से प्रार्थना की, आप देव हो, हमारे माता पिता हो, मैं मेरे पति को वर्णन करना चाहती हूँ। ऐसे उसने देखा तो उनकी पलके नहीं पड़ती थी चारों के, और छाया नहीं पड़ती, दीपक से छाया नहीं पड़ती थी, ऐसे उनको देखा, और जमीन से नहीं छूते थे, आसन पर बैठे तो छूते नहीं थे, ऊपर अदरी हो रहे, क्योंकि ये देवता है, हमारा नर नहीं है, नर तो मनुष्य है, आंखें भी भक्ति होती है तो पलके भी पड़ती है, ऐसा देखकर नल को फिर वर्णन कर दिया। वो नल के वर्णन करने से देवता लोग खुश हुए, देवताओं को शरण हो गई दमयंती कि मैं आपके शरण हूँ, मैं अपने पति को चाहती हूँ और किसी को नहीं चाहती, तो वे खुश हो गए, तो उन्होंने वरदान दिया है। कलयुग बिगड़ गया, किसने बड़ा अन्याय किया, देवताओं का तिरस्कार किया, इस नल को तो दुख देना है, तो भीतर प्रवेश हो, कई दिन रहा हुआ प्रवेश हो नहीं सका, फिर उन्हें महाराज मौका नहीं लगा कलजू को प्रवेश होने के लिए, एक दिन लघुशंका करे प्रसाद कर आया और पैर नहीं धोया, ऐसे आसमन कर संध्या में बैठ गया, आज मौका लग गया सूखी का, कई दिनों बाद बसों बाद सब प्रवेश हुआ, फिर में प्रवेश हुआ, दुर्बुद्धि पैदा करी, फिर पुष्कर अपने भाई के साथ जुआ खेला, जैसे विजय हार गया जिम हार गया, राज से निकाल दिया गया, मेरे राज में कोई इसको सत्कार करेगा तो प्राण बदला दिया जाएगा, ऐसा हुक्म दे गया, इससे से बिचारी भी चली, वो कथा नव दमयंती की पुस्तक आ गई है, कोई ऐसा देखना चाहे तो उसमें ये महात्म बताया है कि कर्कोट कश्य नाग से और दमयंत्या नरेश ऋतुपर्ण से राजर्ष कीर्तनम काली नाशनम, इस नल दमयंती का पढ़ना अध्ययन करे कीर्तन करेगा तो उसको कलयुग नहीं बैठेगा, फिर वो कलयुग भीतर गया, फिर नल के भीतर गया, नल है जो एक दिन वो जंगल में घूमता था, अपने स्त्री को छोड़ दिया, आधा बस काट करके ले गया, छोड़ दिया, तो वहां घूम रहा था तो वहां आग लगी जोर से, तो कर्कोटक नाम का एक नाग था, बहुत बड़ा नागराज देवता, नाग देवता था, वो नाग सांप रूप, तो सांप रूप से पड़ा, उसने कहा कि भाई मेरे को नाग जी ने सांप दे दिया है, तो मैं चल नहीं सकता, पड़ा रहता हूँ, तो मेरे को बचाओ, आग आ जाए बच जाऊंगा भीतर में, तो नाग ने कहा काशिया ऊपर का अपना ले लिया, ऊपर उठा लिया अपने से बचाने के लिए, तो कहते तुम पैर गिनो, क्योंकि बदला उतारना है, तेरा मेरे पर बदला हुआ, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस काट गया, अरे काट गया कैसे, दस कहा ना, दस दस ने धातु है, दस तो दस काम दस अंतो दस 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 तो दस पंग दस ऐसे आगे दे दी, इस बार दस क्यों तेरे कहने तुम तो गिनती करी देगी, पाप गिड़ू मैं तो कदम गिना था, तो कोई बात तुम्हारे को जहर नहीं आएगा, तुम्हारे शरीर में फंसा हुआ जो कलजुग है ये जहर कलजुग उसको ही रहेगा, ये जहर जलता रहेगा, जब तक तुम्हारे में रहेगा तब तक ये जलता ही रहेगा, ऐसा उसे साफ दिया और उसका रूप बिगड़ जाएगा जहर से, वो छोटे छोटे हाथ ऐसा ऐसा भद्दा हो गया रूप, तो ये तेरा ऐसा रहेगा, तू छिप नहीं सकेगा, बहुत सुंदर है राजा था, छिपेगा कैसे, अब मैंने कट काट दिया ना जहर का, और रूप तेरा बिगड़ गया, ये मैं कपड़ा देता हूँ, जिस दिन कपड़ा दे उठेगा तेरा रूप आ जाएगा, जैसा जैसा ऐसे बदलाव दिया कर्कोट ने, तो कर्कोट नाग और दमयंती और नल पस ये जाकर ऋतुपर्ण के महाराज जी ने घोड़ों पर रहा है, काम किया नौकरी करी है नल ने, तो वो सब कलयुग दूर हो गया, तो आने शांति रात जाऊ, वो फिर आया है, नर फिर आकर के पुष्प से जीता है, अपने ससुराल आ गया, वो कलजुग निकल गया तो कलजुग बहेड़े के वृक्ष में घुसा हुआ, तो बहेड़े के छाया में बैठने से कलयुग व्याप्त होता है और नरेंद्र जी की कथा सुनने से कलजुग नष्ट हो जाता है। ऐसी बात है तो शांति आर जो शांति क्षमा कर देगा, नल ने क्षमा कर दिया, नल ने जाकर पीछा क्या पुष्कर से कि मैं तेरे को आया हूँ अपने ससुराल से सब संपत्ति लेकर आया। तो पुष्कर ने कहा अच्छी बात, अब ये भी मैं हड़वाहट लूंगा, सब ले ही लूंगा। तो ऋतुपूर्ण राजा ने एक तो गणना और एक अक्ष विद्या ये दो सिखा दी थी विशेष दिन से, उस सीखने से आदर्श पर विजय कर रही, विजय करके इसको तेरी तरह करूँ तो दंड जरूर मैं जन्म नहीं देता, आज राज्य तेरे को देता हूँ तू आधा करे मैं मेरा अलग रहूंगा मौत से। ऐसे रहे हैं नल, बड़े धर्मात्मा नल राम युधिष्ठिरा, नल है राम युधिष्ठिर, धीरोदत्त नायक है, धीरोदात्त धीरोदात्त धीर प्रशांत धीर धीर प्रशांत, ऐसे नायक होते चार तरह के नायिका होती है, ये साहित्य का भी विषय है। तो धीरोदत्त नायक है धीरोदात्त, तो धीरो उदात्त धीरो उदात्त, तो नल राम युधिष्ठिर है, नल है राजा युधिष्ठिर है, नल राजा है भगवान राम है, ये नायकों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ थे नल। शांति और आर्जवम सरलता सीधापन, अकड़ होती है शरीर में, अकड़ से चलता है तो उससे देहाभिमान बढ़ता है, सरलता से चले तो देहाभिमान कम हो जाता है, देहाभिमान कम होने से अहंकार कम होने से अहंकार क्षेत्र में जैसा क्षेत्र में रहता हो अभी अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा अयम अव्यय, ये स्वयं परमात्मा है, शरीर स्थूल कौन से है, न करोति न लिप्यति, शरीर में रहता हुआ भी न करता है कर्तृत्व अभिमान नहीं होता, शरीर में रहती हुई भी लिप्त नहीं होता, तो ये नहंकृत भाव बुद्धि लिप्त थे ऐसा हो जाता तो आप श्रीमान लोगों का नाम हिंदी लगे बुद्धि थे, ऐसे 18 वर्ष 17 में इसकी बड़ी महिमा गाई है, वो विवेक हो जाएगा ठीक है, विवेक का आदर करने से ऐसी बात हो जाएगी। आचार्य उपासनम और आचार्य की उपासना करना, आचार्य उपासना ज्ञान मार्ग में चलने वाले के लिए अच्छे महापुरुष तत्व जीवन मुक्त उनके पास रहना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ज्ञान मान विमत भव है हरि ने भक्त ने आदरी, ज्ञान का अभिमान हो जाता है। इस बार आचार्य उपासना शौचम शुद्धि शरीर की मन की वाणी की इंद्रियों की शुद्धि साथ में आगे कहने से स्थैर्यम जो अपना विचार किया उस पर स्थिर रहना, आत्मविनिग्रह मन को अपने बस में करना, आत्मविनिग्रह इंद्रिया इंद्रिया से जो वैरागी इंद्रियों के अर्थों में विषयों में वैरागी हो फंसे नहीं तभी अभिमान दूर होगा, नहीं तो अभिमान दूर नहीं होगा। इंद्रिया से जो वैरागी अनहंकार ये अहंकार मिल जाए, अहंकार अनहंकार अहंकार को त्यागे तब वो देहाभिमान मिटेगा, अहंकार रखेगा तो देहाभिमान मिटेगा नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख ये शरीर में जन्म और मृत्यु दो और जरा तीन अव्याधि ये चारों का दुख दोष देखना, शरीर में दुख होता है इतने इतने अवड़ा से दोष दोष है ऐसा देखने में शरीर के साथ मैपन है, इसे त्याग होगा, वो त्याग होगा तो विवेक जागृत होगा, विवेक होगा तो क्षेत्र क्षेत्र की हो ज्ञानों में से ज्ञानों मतम अशक्ति आसक्ति न हो अनभिस्वंग अभिस्वंग होता है, अभिस्वंग क्या एकता हो जाती है, जैसे लड़का बीमार है तो माँ कमजोर हो जाती है, रात दिन बैठी हुई सेवा करती है शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसा तो लड़का बीमार माँ हो जाती कमजोर, ये अभी अभिसंग है एकता है एकता, शरीर धन चला जाए तो घबरा जाता है, बेटा मर जाए तो घबरा जाता है, ये अभिस्वंग उनके साथ एकता है, अभिस्वंग नहीं होना चाहिए। नित्यंत समचित तत्व इष्टानिष्ट की उपत्ति में नित्य समचितता, मनसा हो गया तो न हो गया तो चित्त में सवर चित्त में अंधिकार क्यों लावे, ये तो आने वाली चीज है, संपत्ति आवेगा आदर भी आवेगा आदर भी आवेगा महिमा होगी निंदा भी होगी, इस अनिष्ट की उत्पत्ति में नित्य ही समचितता और भैसा मई चारणी हो गई भक्त अभ्यभिचारणी, मेरे में अनन योग से अभ्यभिचारणी भक्ति हो। अनन योग भगवान के साथ ही है, अरे अभ्यभिचारणी कोई व्यभिचार नहीं, कोई दोष नहीं, कोई कामना नहीं। भगवान शंकर ने ये कहा कि महाराज सत्संग सदा और भक्ति अनुपाई रही, विघ्न रहित कामना रहित भक्ति, बार बार मांग पर मांग हूँ हरिदेव श्री रंग पद सरोज अनुपाई नहीं भक्ति और सदा सत्संग तो अपार विघ्नो रहित ऐसी अव्यभिचारी भक्ति विघ्न देश में तो वो एकांत में देने का स्वभाव कहीं भक्त मिल जाते थे। स्वभाव है झंझट में ज्यादा रहने का मन नहीं करता है, ये भी ज्ञान है। अर्थ जन संसदी, जन संसदी उनमें अर्थ ही हो क्षेत्र से सत्संग हो रहा है वो जन संसदी नहीं है। क्षेत्र में खास खास सत्संग में जो विवेक की असली बातें है उद्धार की बातें भी सुनना वो काम में लाना ये जन संसदी नहीं है। बातें चीते करे साथ गिरे घुले करे वो जन संसदी है, उसमें है नुकसान होता है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम और अध्यात्म परमात्म से ज्ञान है इसमें स्थिति है। और तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन, तत्व ज्ञान का अर्थ हो परमात्मा समझेंगे तो सब जगह भगवान बोलेंगे श्री राम में सब जग जानी तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन। तत्व ज्ञान का अर्थ परमात्मा वो सब जगह देखे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। एतज ज्ञानम इसी एतज भगवान साफ ये पास में ये ज्ञान है। और अज्ञानम यदा अतः अन्यथा इससे जो झूठा है माने तुम दम्भित तुम आदि है सब अज्ञान है। तो ये ज्ञान होने से असली क्षेत्र क्षेत्र का विवेक हो जाएगा तो बंध से मुक्त हो जाएगा। ये ग्यारह श्लोक है। अब इनमें कोई पूछना तो पूछ लो समाज करें नारायण 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 नारायण।